लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति पृथ्वी तथा प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के पीड़ितों की पुकार सुनकर व्यक्तिगत रूप से उस विश्व की देखभाल का दायित्व ग्रहण करे जिसमें हम सभी निवास करते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत रोम में पौत्र क्रूस महागिरजा घर पर एक लघु चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। यरूशलेम में पौत्र क्रूस महागिरजा घर एक रोमन कार्तिक माइनर बसिलिका है जो रोम में स्थित है। परंपरा के अनुसार महागिरजा घर को लगभग 325 ईस्वी में स्थापित किया गया था ताकि रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन प्रथम की मां महारानी हेलेना द्वारा पौत्र भूमि से लाए गए यीशु के दुख भोग के अवशेषों को रखा जा सके। रोम में सेंट जॉन लैटरन महागिरजा घर और पोर्ता माजोरे के बीच स्थित यरूशलेम में पौत्र क्रूस महागिरजा घर 7 गिरजाघरों में की जाने वाली तीर्थयात्रा के मार्ग का हिस्सा है जिससे प्राचीन तीर्थयात्री पैदल तय कर पूरा करते थे। सम्राट अगस्तस के समय में एस्क्विलिनो एक आवासीय क्षेत्र था जिससे 3री शताब्दी में सेवेरन सम्राटों द्वारा शाही निवास बनाने के लिए चुना गया था जिसमें एक महल, एक सर्कस और एक अखाड़ा शामिल थे जिसमें बाद में ऑरेलियन दीवार शामिल किया गया। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने परिसर को पुनः स्थापित किया और इसे सेसोरियम नाम दिया। वर्ष 324 में जब कॉन्स्टेंटाइन ने साम्राज्य की राजधानी को कुस्तुनतुनिया में स्थानांतरित किया तो निवास उनकी मां हेलेना की संपत्ति बन गई और इसमें कई बदलाव हुए। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था आवासीय परिसर के एक हिस्से का चैपल में रूपांतरण जिससे कलवारी पहाड़ पर महारानी द्वारा पाए गए यीशु के पौत्र क्रूस के अवशेषों को रखने के लिए डिजाइन किया गया। यह प्रार्थनालय महागिरजा घर का केंद्र बन गया जिसे मूल रूप से हेलेना का महागिरजा घर भी कहा जाता था। 8वीं शताब्दी में पोप ग्रेगोरी द्वितीय और पोप हेड्रियन प्रथम ने महागिरजा घर को पुनः स्थापित किया। 12वीं शताब्दी में लुसियस द्वितीय ने इसमें रोमन शैली के अनुसार एक बरामदा और एक घंटाघर बनाया। सदियों से इसमें कई बदलाव हुए हैं। कार्डिनल मेंडोसा के द्वारा मरामत के दौरान महागिरजा घर की दीवार के अंदर छिपे एक बॉक्स में पौत्र क्रूस का शीर्षक पाया गया। यह खुदा हुआ लकड़ी का टैबलेट था जिसे यीशु के क्रूस पर रखा गया था। उससे अभी भी बसिलिका के अंदर देखा जा सकता है। इमारत का वर्तमान स्वरूप 18वीं सदी का है। पोप बेनेडिक्ट 14वें की इच्छा से वास्तुकार पियेत्रो पासालाक्वा और डोमेनिको ग्रेगोरिनी ने गिरजाघर के आंतरिक और बाह्य हिस्से को बदल दिया, एक अंडाकार आलिंद बनाया और मध्ययुगीन मुखौटे को ट्रैबर्टीन से बने आधुनिक मुखौटे में बदल दिया। नए मुखौटे में उन्होंने सच्चे बारों के दृश्य प्रभाव के साथ अवतल और उत्तल मात्रा को बारी बारी से बनाया। महागिरजा घर के पास अच्छे स्वास्थ्य की महारानी माता मरियम का चैपल है। कहा जाता है कि एक बार पोप सिक्सतुस चौथे भयंकर तूफान में फंस गए थे और ऑरेलियन दीवारों की आड़ में माता मरियम की एक तस्वीर में शरण लेकर सुरक्षित बच गए थे। उन्होंने 1476 में उसी स्थान पर एक चैपल बनवाया जिससे अब अच्छे स्वास्थ्य की हमारी माता मरियम का चैपल कहा जाता है। संत हेलेना द्वारा सच्चे क्रूस की खोज की कहानी जिस पर यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था ख्रिस्ती परंपरा में एक महत्वपूर्ण घटना है। 4वीं शताब्दी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट की मां संत हेलेना ने पौत्र भूमि की यात्रा के दौरान यीशु के पौत्र क्रूस की खोज की। लगभग 326 से 328 के बीच कॉन्स्टेंटाइन की मां हेलेना, जो तब एक वृद्ध महिला थीं, यरूशलेम की तीर्थ यात्रा पर निकली। उनके बेटे कॉन्स्टेंटाइन ने उससे पहले 313 ईस्वी में मिलान का आदेश जारी किया था, जिसने पूरे रोमन साम्राज्य में ख्रिस्त धर्म को वैध बना दिया था। हेलेना की यात्रा कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ख्रिस्त धर्म को बढ़ावा देने और उनका समर्थन करने का एक बड़ा प्रयास था। हेलेना अपने तीर्थ यात्रा में गोलगोथा या कलवारी पहाड़ की जगह पर गई, जहां यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। ख्रिस्तीय परंपरा के अनुसार यह स्थान दूसरी शताब्दी में सम्राट हैड्रन के अधीन रोमन लोगों द्वारा बनाए गए एक मूर्ति पूजक मंदिर द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था, संभवतः बढ़ते ख्रिस्त धर्म को दबाने के लिए। हेलेना ने उस स्थान की खुदाई का आदेश दिया। खुदाई के दौरान 3 क्रूस पाए गए। चूंकि यह स्पष्ट नहीं था कि तीनों में से कौन सा क्रूस सच्चा था, परंपरा के अनुसार सच्चे क्रूस की पहचान एक चमत्कार के माध्यम से हुई। यरूशलेम के बिशप मैक्रियस ने एक गंभीर रूप से बीमार महिला को उस स्थान पर लाया। जब महिला ने पहले 2 क्रूस को छुआ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उसने 3रे क्रूस का स्पर्श किया तो वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। इससे एक दिव्य संकेत के रूप में लिया गया कि वह 3रा क्रूस ही सच्चा क्रूस था। खोज के बाद हेलेना ने उस स्थान पर एक गिरजाघर बनवाया, जिसे पौत्र कब्र का गिरजाघर कहा जाता है। उन्होंने ख्रिस्त जगत के विभिन्न हिस्सों में अवशेषों के रूप में सच्चे क्रूस के टुकड़े भी वितरित किए, जिससे ईसाई परंपरा में इसका महत्व और भी बढ़ गया। इस खोज ने ईसाई धर्म को बहुत प्रभावित किया और क्रूस को आस्था के प्रतीक के रूप में पूजने का मार्ग प्रशस्त किया। इस घटना को कई ईसाई परंपराओं में 14 सितंबर को पौत्र क्रूस विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। रोम आने वाले तीर्थयात्री इस ऐतिहासिक एवं पौत्र महागिरजाघर का दर्शन अवश्य करते हैं। तीर्थयात्री हर दिन सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे और 3:30 बजे से 7:30 बजे तक महागिरजाघर का दौरा कर सकते हैं। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत यरूशलेम में पौत्र क्रूस महागिरजाघर के बारे सुन रहे थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
से भरा क्रूस पर चढ़ा, सबके गुनाहों की खातिर देखो, लहू से भरा क्रूस पर चढ़ा। यीशु ने कहा है, जो कोढ़े सह कर यीशु ने कहा है, इन्हें माफ कर दो, नादान ये हैं।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका रिटायरमेंट। लेखिका है अंतरा करवड़ी। श्रोताओं, अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि रिटायरमेंट के बाद का वक्त तो केवल आराम करने का ही होता है। घड़ी की सुइयों से बेपरवाह जिंदगी की तस्वीर बनाते हैं, रिटायरमेंट के उपरांत सरकारी कर्मचारी अपने को अक्षम मानना शुरू कर देते हैं तथा शहर में लगे बेंचों या पार्कों में अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन ताश खेलते व फिजूल बातें करने में बिता देते हैं। पर प्रत्येक सेवानिवृत्त व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि वह सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुआ है, न कि कार्य करने की क्षमता से। इसलिए अपनी क्षमता और अनुभव के अनुसार हर समय काम करते रहना चाहिए। एक खुशहाल रिटायरमेंट वाला जीवन ऐसा होना चाहिए जो नौकरी या कारोबार में लंबे समय तक रहने के बाद अपनी इच्छाओं को पूरा करने के साथ जिए। जीवन एक बहुमूल्य वरदान है जिसको सही से जीने की ललक और सेहत के प्रति जागरूक बढ़ने के कारण औसत उम्र में वृद्धि हुई है। आजकल उनके जीवन शैली में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। अब वे अपने जीवन की इस पड़ाव में भी बिजी रहना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आज उनके पास कई बेहतर विकल्प भी उपलब्ध हैं। उन्हें चाहिए कि वे घर से बाहर निकलकर समाज में अपना योगदान देकर अपने जीवन को सार्थक व रचनात्मक बनाएं। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सकी। तो लीजिए, प्रस्तुत है अंतरा करवड़े की लिखी नाटिका रिटायरमेंट।
आ गए आप? क्या कहा डॉक्टर ने?
अरे डॉक्टर तो हैरान रह गया हमारे दोस्त की तबीयत देखकर। कहने लगा कि मल्होत्रा साहब इतने चुस्त दुरुस्त हैं कि फिर से शादी कर लें।
आप भी क्या भाई साहब, 60 पार हो गए हैं ये, रिटायर्ड हुए 1 महीना हुआ है।
अब तुम फिर शुरू हो गई, जब देखो तब रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड हो गए। अरे भाई, रिटायर्ड होना कोई पाप है क्या? काम करने की ताकत तो उतनी है, देखो।
बढ़िया ही ताकत।
अरे मल्होत्रा, तू अपनी नई कंपनी बनाने वाला था ना, उसका क्या हुआ?
बस कल सीए के यहाँ से पेपर रजिस्टर होकर आ जाएंगे और अपना काम शुरू हो जाएगा।
लेकिन भाभी जी को नाराज करके कोई काम मत करना भाई। अरे देख राम नारायण, ये जो रिटायर्ड आदमी होता है ना,
घर में बैठे रहते हैं, हर काम में मीन मेख निकालते हैं, बाहर क्यों नहीं जाते? और बाहर जाता है तो कहते हैं, पता है क्या कहते हैं, कि सारी जिंदगी काम ही तो किया है, अब जरा आराम कीजिए।
हाँ हाँ, हम तो इन्हें कोसने को ही तैयार बैठे रहते हैं, मैं सुन रही हूँ सब कुछ। भाई साहब आप ही बताइए ना, भगवान की दया से सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, नौकर चाकर, और तो और बेटा भी विदेश से पैसे भेजता है। अब ऐसे में इन्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत है क्या?
भाई मल्होत्रा, भाभी की बात में तो दम है भाई।
अरे क्या खाक दम है, सबके सब स्वार्थी हैं।
अच्छा
हाँ,
अब इसमें हमारा क्या स्वार्थ सामने आ गया?
अरे और नहीं तो क्या, ये दुनिया है दुनिया है, और हर किसी ने सामाजिक मापदंड के हिसाब से चलना चाहिए। अब मैं रिटायर्ड हूँ तो मैंने घर में बैठकर अखबार और टेलीविजन के सामने बैठकर कुर्सी तोड़नी चाहिए, नाती पोतों को स्कूल बस में बैठाना चाहिए, और बिजली पानी के बिल भरना चाहिए, और हर महीने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बस यही अपेक्षा है ना तुम्हारी?
अरे मेरा तो कहना बस इतना है कि आपने हमारे लिए जीवन भर इतना किया है, अब आपके आराम करने का समय है। बताइए भाई साहब, मैं गलत हूँ क्या?
अरे कामनी, तुम्हें क्या लगता है कि कोई इंसान जीवन भर नौकरी सिर्फ घर चलाने के लिए करता है? अरे क्या इस काम में वो खुद शामिल नहीं होता? काम करते रहने से हमें ऊर्जा मिलती है।
लेकिन अब इस ऊर्जा की जरूरत किसे है?
अरे मुझे है, और मैं तो कहता हूँ जी कि तुम्हें भी है। मेरी बात मानो, और तुम्हारी ये किटी विटी पार्टी और क्लब शलब के चक्कर छोड़कर मेरे साथ मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, और देखो मेरी तरह।
अरे मल्होत्रा, अब तुम भाभी को कहाँ इस काम में घसीट रहे हो भाई, हमारी बात तो सुन ही नहीं है, ऊपर से मनमानी करने चले हो, बस करो।
अरे मैं जानता हूँ, अब सीधे फोन लगेगा हमारे बड़े सुपुत्र को और उनसे चिरौरी की जाएगी कि वे कुछ दिनों के लिए यहाँ आकर रहें और मुझसे ये आदत छुड़वा कर जाए।
लेकिन भाभी, भाभी को जब पसंद नहीं है तो तू क्यों जिद पर अड़ा है मल्होत्रा?
ओए देख राम नारायण, किसी बेसिर पैर की बात पर जिद करना तो मुझे है नहीं है पसंद। तूने देखा है मेरे को जिंदगी भर कभी मैंने किसी की जिद मानी नहीं है। कामनी ने भी ये सोचना चाहिए कि इतना अनुभव होने के बाद मैं कोई ये बच्चा हूं कि जो इतना बड़ा जोखिम लूंगा।
अरे चल ये सब छोड़ मल्होत्रा, मुझे तो ये बता कि तू काम कब से और कौन सा काम शुरू कर रहा है।
ओए मैं मल्होत्रा सर्विसेज के नाम से कंपनी खोल रहा हूँ। इस कंपनी का हेड ऑफिस यहाँ और ब्रांच ऑफिस होंगे पटियाला, अहमदाबाद और कुल्लू में।
अरे तो तीनों ही शाखाएं एक दूसरे से इतनी दूरी पर।
यही तो मेरा नया विचार है। ये तीनों क्या है? ये तीनों हैं पर्यटन स्थल। आजकल लोग पर्यटन व शॉपिंग एक साथ करते हैं, ऐसे में क्यों ना पर्यटन स्थलों पर ही अपने काम का विस्तार किया जाए।
बात में तो दम है, लेकिन ये पटियाला, अहमदाबाद और कुल्लू के ऑफिस कौन संभालेगा?
वही गार्डन में मेरे साथ मॉर्निंग वॉकर्स पर काफी लोग आते हैं और काफी बड़ा ग्रुप है मेरा, अकेला नहीं है मल्होत्रा। उनमें से तिवारी जी जाएंगे कुल्लू और शाह जी जाएंगे अहमदाबाद और आनंद जी जाएंगे पटियाले।
यानी पूरी की पूरी रिटायर्ड लोगों की फौज खड़ी कर रखी है।
ओए पता है राम नारायण मुझे ये विचार क्यों आया? बता बता मुझे विचार क्यों आया?
क्यों आया भला?
ओए मैंने एक लेख पढ़ा था जिसके अनुसार 60 साल के बाद आदमी में आत्मविश्वास सबसे अधिक होता है। क्या होता है? आत्मविश्वास। चूंकि वो अनुभवी हो जाता है इस कारण सबसे अच्छे निर्णय ले पाता है और बस उसे अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने की जरूरत है।
वैसे बात तो 16 आने सच है तेरी मल्होत्रा।
अरे तो बस छोड़ दे ये रिटायरमेंट का ढकोसला और आ जा रहे मेरी जमात में।
अरे समझ ले मल्होत्रा, आ ही गया।
हेलो। हाँ हाँ कुलदीप बेटे, अरे पापा तो नए काम में ऐसे उलझे हैं कि पूछ मत। पता है तुझे, साल भर के भीतर शुरू हुई कुछ चुनिंदा कंपनियों को आज अवार्ड मिलने वाला है, उसमें इनकी कंपनी का भी नॉमिनेशन है। अच्छा बहू ठीक है? और रॉनी? अच्छा बेटा शायद पापा आ गए, अब चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ
कामनी मैडम। ओए कामनी मैडम, मैंने कहा कहाँ हैं आप?
अरे वाह आ गए आप।
आ गए।
ये क्या है, बेस्ट न्यू कमर इन द इंडस्ट्री स्पेशल अवार्ड? क्या बात है मल्होत्रा साहब, मान गए आपको।
ओए दाद ही देनी है तो हमारी स्पिरिट को दो, जिसने हमसे ये सारा काम करवाया है। आपने बार बार हमारी खिंचाई की थी याद है, और हमने काम को हर तरीके से करने दिया। अरे उम्र को हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर।
और भाभी यही नहीं, हमारी कंपनी को एक विशेष पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि ये पहली ऐसी कंपनी रही जिसे शुरू करने वाले सारे के सारे रिटायर्ड लोग थे।
वाकई मान गए आपकी सोच और आपकी लगन को। मैं अभी कुलदीप को फोन करती हूँ।
अरे भाभी, अरे फोन बाद में, पहले तो गर्मा गर्म चाय बनाइए।
अच्छा
ये लीजिए, हम आपके पसंदीदा पनीर पकोड़े भी साथ लाए हैं।
क्या बात है, आपका भी जवाब नहीं भाई साहब। लेकिन भाई साहब मुझे जरा आपके दोस्त से एक बात पूछनी थी।
पूछिए पूछिए।
यही बात पूछनी थी कि उनकी कंपनी में यदि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट खाली हो तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ?
रिटायरमेंट। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे संदीप दुबे और अंतरा करवड़े। इंदौर के सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।